करेंगे भाई। ओम शांति। अरे थक जी पे है, मुंह में ओम शांति नथो निकरे हुआ है। ओम शांति, नची नची करे ओम शांति। दीदी स्वागत कहवा हाने थोड़ो दिल सा आ मुस्कराए करे स्वागत कयो। चेहरे ते मुस्कुराहट भी हुए ना, हाने स्वागत कयो रूहानियत में, स्वागत कयो दीदी जो हमारे बीच। दीदी जी आ चुके हैं, आदरणीय उषा दीदी जी, आ वरिष्ठ राजयोग ध्यान शिक्षिका और भारत के राजस्थान के माउंट आबू में वैश्विक मुख्यालय स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रबंधक प्रशिक्षक है। अपने सहज गुणों, क्षमताओं और परमपिता के आशीर्वाद से आप अपनी ताकत और विशेषता को एक सार्थक दिशा में केंद्रित किया है। वास्तव में आप आध्यात्मिकता का एक व्यवहारिक उदाहरण है। 1980 में आपने खुद को पूरी तरह से मानव जाति की आध्यात्मिक सेवा के लिए समर्पित किया। 1980 और 1992 के बीच आप बंबई और हैदराबाद केंद्रों से जुड़ी रही। 1985 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष आपने भारत एकता युवा मार्च में भाग लिया, जो बॉम्बे से दिल्ली तक विस्तारित हुआ और आध्यात्मिकता के ज्ञान का प्रसार करने वाले कई गांव, कस्बों और शहरों में पद यात्रा की। आपने भारत के कई औद्योगिक समूहों द्वारा उच्च श्रेणी के अधिकारियों और प्रबंधन कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित एवं प्रबंधन नेतृत्व पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार आधुनिक प्रबंधन दर्शन के साथ आध्यात्मिक आयाम का भी सम्मिश्रण किया गया। उनमें से कुछ है जनरल इलेक्ट्रिक हांगकांग, थाई रेयान कंपनी थाईलैंड, DRDO भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इफको, क्रबको, गुजरात मिल्क मार्केटिंग आदि। आज दीदी जी हमें कर्मों की गुह्य गति बताएंगे, क्योंकि संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। क्योंकि हम इस संसार से जब जाते हैं तो हमारे साथ संस्कार अर्थात कर्म ही साथ जाते हैं और कुछ नहीं जाता है। इसलिए कहा गया है, जग में तू आया था, जग हंसा था तू रोया था, बसर कर ऐसी जिंदगी जो जग रोए और तू हंसता जा। ये तब होगा जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। तो आज दीदी जी हमें कर्मों की गुह्य गति पर ज्ञान देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दो मिनट पहले परमात्मा के याद में बैठेंगे और फिर आरंभ करते हैं।
श्रेष्ठ बनेंगे कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
I'm
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने गीत सुना, कर्म हमारे श्रेष्ठ तभी बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। ईश्वर के घर से जब हम इस संसार में आते हैं, ये सृष्टि के नाटक में अपना पार्ट बजाने के लिए, तो ईश्वर हमें कोई न कोई वरदान जरूर देता है गिफ्ट के रूप में। और वो वरदान इसीलिए हमें प्राप्त होता है, कोई न कोई सद्गुण रूपी वरदान हमें इसीलिए मिलता है ताकि उसके आधार से हम इस संसार में अच्छे कर्म करें। उसी के लिए वो वरदान हमें प्राप्त हुआ है। स्लो चलाओ। तो इसीलिए हमें वो वरदान मिला है ताकि उस वरदान के प्रयोग से हम अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म करें, स्वयं भी खुश रहे और उसी के माध्यम से, उस सद्गुण के प्रयोग के माध्यम से हम दूसरों को भी खुशी बांटते रहे या दूसरों को भी सुख दे सके। और इसीलिए दुनिया के अंदर आज मनुष्य के पास भले सब कुछ हो, लेकिन फिर भी कर्म की गति जो है वो बहुत गुह्य है, जिसको समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक इस कर्म की गुह्य गति को इंसान समझता नहीं है, तब तक उसे वो अटेंशन नहीं रहता अपने कर्म पर, और इसीलिए कई प्रकार के विकर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने सबसे अधिक अर्जुन को जो बताया वो कर्म योग का ही विषय लिया। कोई अध्याय ऐसा नहीं है भगवद गीता में जिसमें कर्म की बात नहीं किया हो। ज्ञान योग की बात की है, ध्यान योग की बात की है, बुद्धि योग की बात की है, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े। लेकिन कर्म के ऊपर सबसे अधिक श्लोक मिलेंगे आपको, क्योंकि कर्म ही इंसान की पहचान है। कहा जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में अगर कोई कहे तो यही कहा जाता कि पहले आप मुझे बताओ कि उसका संग कैसा है, तो मैं आपको बता दूं वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि संग में ही आकर के इंसान कर्म करता है और इसीलिए उस कर्म से ही उसकी पहचान बनती है। तो हमारे अस्तित्व हमारे कर्म से है। दुनिया के अंदर अगर किसी को इज्जत मिलती है तो भी उसके कर्म से, और अगर उसको गाली मिलती है तो भी उसके कर्म के कारण। तो कर्म कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, कि जाने के बाद भी लोग अगर याद करेंगे तो इसके पास इतना धन था, मिलकत था, ये याद नहीं करेंगे। लेकिन क्या याद करेंगे? वो व्यक्ति कैसा था, बहुत अच्छा इंसान था, इस रीति से ही याद किया जाता है। तो सोचो कि हमें अपनी पहचान इस संसार के अंदर कैसी बनानी है, और उसके लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना आवश्यक। जब भगवान ने अर्जुन को कर्म योग की बातें बताई और यही प्रेरणा दी, तुम कर्म योगी बनो, है ना? योगी तो बाद में बनना, पहले कर्म योगी तो बनो। कई लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन हमारा मेडिटेशन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? देखा गया है, अनुभव किया गया है कि कर्म योगी जब तक नहीं बनेगा तब तक वह योगी भी नहीं बन सकता है, यानी उसका योग लग ही नहीं सकता है। आज व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठ जाए, आधा घंटा साइलेंस में बैठ जाए और मेडिटेशन से उठने के बाद किसी ने कोई ऐसी हरकत की, इतना गुस्सा आ गया, तो देखने वाला भी क्या कहेंगे परिवार में, आपने मेडिटेशन किया ना, इतनी देर शांति में बैठे, लेकिन अगर वो शांति आपके जीवन में नहीं है, आपके कर्म में नहीं है, तो आपने मेडिटेशन क्या किया? ये कहेंगे ना, बच्चे भी कहेंगे कि आप मेडिटेशन करने के बाद भी अगर इतना गुस्सा करते हो तो आप मेडिटेशन क्या कर रहे हो, है ना? इसका मतलब वो आधा घंटा वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो चीज आपके कर्म में आई नहीं। अच्छा, मेडिटेशन से उठने के बाद छोटी सी बात कोई पूछने आए, बात बात में झूठ वो निकलता रहे, तो मेडिटेशन किया कहेंगे क्या? तो इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को कहा तू कर्म योगी बन। माना कर्म के अंदर जो समझ है, जो ज्ञान की बातें हैं, उस ज्ञान की बातों को कर्म में अप्लाई करो। अगर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो योगी बनना तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले अप्लाई करके अपने कर्मों को तो श्रेष्ठ बनाओ। इंसान के कर्म अगर श्रेष्ठ होंगे तो उसको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिससे जब मेडिटेशन में बैठेगा तो सहज मन लग जाएगा। गलत कर्म करने के बाद अगर मेडिटेशन, तो क्या प्रार्थना करने के लिए भी मंदिर में जाएंगे तो प्रार्थना हो सकती है? यह मन बार बार अंदर कचोटता रहता है, ये गलत कर्म करके मैं आया तो हूं, भगवान मुझे माफ कर देना, भगवान के आगे कहते हैं, तो भगवान से एक योग माना स्नेह भरा संबंध कहां है? गलत कर्म करने के बाद तो एक माँ बाप भी बच्चे को क्षमा नहीं करता है। तो ईश्वर, अगर बार बार हम गलती करते रहे और प्रार्थना में उससे माफी मांगने का प्रयत्न करते हैं तो स्नेह भरा संबंध कहां है? योग माना ही जोड़, कनेक्शन। आज इंसान का भी इंसान से कनेक्शन कब होता है? स्नेह के माध्यम से। बिना स्नेह के कोई संबंध होता है क्या? तो ईश्वर के साथ भी संबंध जो जोड़ना है वो स्नेह के आधार पर ही होगा। और स्नेह तभी आएगा जब हमारे अच्छे कर्म होंगे, अंदर में एक आत्मसंतुष्टि होगी, तो सहजता से हम ईश्वर को याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे कि ईश्वर धन्यवाद तेरा कि तुमने मुझे ऐसी शक्ति दी है जो मैं अच्छे कर्म तो कर सका। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसीलिए कहा कि भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि अर्जुन तू सन्यासी बन जा, तू घर बार छोड़ दे, तो अपना कर्तव्य छोड़ दे, अपनी जिम्मेवारी छोड़ दे और तब तुम योगी बन सकेगा। नहीं, शुरू से अंत तक यही कहा तू कर्म योगी बन। जो कर्म कर, भले तेरे को संघर्ष भी करना है, युद्ध भी करना है। युद्ध माना किसी से हिंसा या मारने की बात नहीं है, लेकिन जीवन एक संघर्ष है जहां हर समय इंसान को युद्ध करना पड़ता है। कभी वो अपने आप से युद्ध कर रहा है, कभी वो दूसरे से युद्ध कर रहा है, कभी वो हालातों से युद्ध कर रहा है, कभी वो समस्याओं में लड़ रहा है। लड़ रहा है ना, जिंदगी क्या है, एक युद्ध क्षेत्र हो गया है। तो ये युद्ध क्षेत्र में कैसे इस युद्ध में विजयी होना है, उसके लिए कर्मयोगी ही हमें विजयी बनाता है। बिना कर्मयोग के विजयी नहीं हो सकता है इंसान। इसलिए उसको कहा तू अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म करेगा तो जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो आज किसी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है ना? तो कई लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष देखकर क्या कहेगा, अरे तुम्हारे पर तो 7.5 चल रही है, डरा दिया फलाना तुम्हारे साथ में ढैया चल रही है, राहु केतु आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया, सारी बातें बताते हैं। अच्छा फिर क्या कहते हैं मनुष्य, अच्छा इसका उपाय क्या है, तो उपाय में क्या बताते हैं, क्या बताएंगे, 1,25,000 नाम लिखो और यज्ञ करके उसमें स्वाहा करो। दूसरा कहेंगे दान करो, या कहेंगे गाय को खिलाओ, इसको खिलाओ, ये करो वो करो। तो मिनट ईश्वर की याद में तो इसीलिए वो यही कहेंगे कि भाई 1,25,000 नाम लिखना पड़ेगा भगवान के, है ना। अच्छा, अगर उसने कहा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, कब लिखेंगे 1,25,000 नाम, तो कहा कोई बात नहीं, आप पैसा दे दो हम लिखवा देंगे, है ना, आपके नाम से लिखवा देंगे और फिर आपसे यज्ञ करवा देंगे। अब भावार्थ ये कि 1,25,000 नाम लिखना, उससे कैसे आपकी ग्रहाचारी दूर हो जाएगी, बताओ क्या कनेक्शन है 1,25,000 नाम लिख करके ग्रहाचारी दूर करने का। कनेक्शन यही है कि जब आप ये कर्म कर रहे हैं लिखने का, तो उस समय कोई बुरा विचार तो नहीं आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो नहीं आता है लिखते समय, है ना। भगवान का नाम लेकर के ही आप लिख रहे हैं। भावार्थ ये कि इंसान के जीवन में कोई भी ग्रहाचारी तब आती है जब उसका पुण्य का खाता क्षीण हो जाता है, तब उसके जीवन में ग्रहाचारी आती है, है ना। तो जब आप ईश्वर का नाम लिखेंगे, दान करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करेंगे, तो आपका पुण्य का खाता थोड़ा बढ़ेगा। तो वो पुण्य का खाता जब बढ़ेगा तो आपकी ग्रहाचारी रूल आउट हो सकती है। नहीं तो आप सोचो, एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं, एक के घर में राहु केतु आ गया, शनि आ गया, 7.5 आ गए, और दूसरा तो मौज कर रहा है। कारण यही है कि उसने अपने जीवन में पुण्य का खाता जो है वो पुण्य का खाता बराबर है, तो इसीलिए वो मौज कर रहा है। और इसका पुण्य का खाता क्षीण हो गया तो 7.5 आ गई, और इसीलिए उनका उपाय यही बताया जाता कि आप कोई ना कोई पुण्य कर्म करो तो पुण्य कर्म अर्थात आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आप माइनस में नहीं होंगे। माइनस में जाना माना ही 7.5, माइनस में जाना माना ही ढैया। लेकिन आप जो पुण्य करो तो आप अपना प्लस का खाता बढ़ा देते हैं, वो माइनस आपका कम हो जाता है, तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स समाप्त होती है। जैसे ही आप माइनस में गए, वो माइनस नेगेटिव नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू करती है। हिसाब है ये तो सीधा, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव में गए तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चालू करते हैं, तो उस नेगेटिविटी के ऊपर आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये सिंपल एक हिसाब है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताता हूं गीता के अंदर। और सबसे पॉपुलर श्लोक गीता का है कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज की दुनिया में तो क्या हो गया है, पहले इंसान को फल की चिंता होती है, ये किया तो क्या मिलेगा, है ना। एक छोटे बच्चे को भी आप कहो बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो क्या कहेगा, क्या मिलेगा, मैं पानी लाके दूं तो आप क्या देंगे मुझे। फल की चिंता पहले है कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन भगवान ने कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि फल जो है कर्म की परछाई है। जिस तरह इंसान जब चलता है तो उसकी परछाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी तरह कर्म से फल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। इसलिए कर्म सिद्धांत किसको कहा जाता है? कर्म सिद्धांत माना जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है। इसीलिए जो कर्म किया जैसा किया वैसा मिलेगा, तो फल इनसेपरेबल हो गया, उसको अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान का कहने का भावार्थ ये था, तू फल पर फोकस करने के बजाय कर्म पर फोकस कर, कि तुम्हारा कर्म कितना अच्छा है उस पर फोकस कर। फल तो मिलना ही है, गारंटीड है, कोई चाहे या ना चाहे। बुरा कर्म करने वाले को भी फल तो मिलना ही है। कौन चाहना रखता है बुरे कर्म का फल मुझे मिले? लेकिन मिलता है ना, सजा भोगनी पड़ती है ना, है ना? तो भावार्थ यही है कि इंसान जितना अच्छा कर्म करता जाएगा, फोकस कर्म पर करेगा, क्योंकि कर्म खाली करने की बात नहीं होती है। कर्म के अंदर क्या क्या जुड़ता है? कर्म के अंदर इंटेंशंस जुड़ते हैं, किस इंटेंशन से कर्म किया गया। कर्म के अंदर भावनाएं जुड़ती है, किस भावना से कर्म किया गया। इसलिए कहा तू कर्म पर फोकस कर, फल तो मिलना ही है, वो तो गारंटीड है, तुम चाहो या ना चाहो। तब कहा गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। फोकस ऑन कर्म, जितना तुम फोकस करेंगे, यानी कर्म करते समय देखो मेरा इंटेंशन कैसा है। किसी को नुकसान पहुंचाने वाला तो इंटेंशन नहीं है, किसी को हर्ट करने वाला इंटेंशन तो नहीं है। जैसे कई बार कई लोग किसी को टोंड मार देते हैं, इंटेंशन क्या होता है? हर्ट करना। अब जैसे ही इंटेंशन हर्ट करना हुआ, तो वो रिटर्न होकर के आएगा या नहीं आएगा? मौका मिलने पर वो भी टोंट मारेंगे नहीं मारेंगे? और शायद ऐसा टोंट मारेंगे जो डबल हर्ट होंगे, तो गारंटीड है। अच्छा, भावना क्या है कर्म करते समय? व्यवहारिक स्तर पर किस तरह का व्यवहार है? इसलिए ये कर्म पर फोकस कर, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है कि उस वक्त हमारे विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारे इंटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारी भावनाएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब उस कर्म में जुड़ती है, और फिर उसके आधार पर ही हमें फल भी प्राप्ति होती है, है ना? तो इसलिए खाली कर्म और फल की बात नहीं है, कर्म में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं तुझे कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। कर्म किसको कहा जाता है, अकर्म किसको कहा जाता है, और विकर्म किसको कहा जाता है? कर्म का मतलब है श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म यानी जो वैल्यूज के बेस पर कर्म होते हैं, वो स्वाभाविक है। जब कोई अच्छे सद्गुण को लेकर के कर्म करता है, अच्छी भावनाओं को लेकर के कर्म करता है, तो उसको कहेंगे श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, अकर्म किसको कहा जाता है? अकर्म माना जिस कर्म का कोई फल नहीं। जैसे जिस कर्म का कोई फल नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बीज है मेरे पास, और उस बीज को, आम का बीज है, उस आम के बीज को मैं धरती में रोपित करती हूं, ये मेरा कर्म है। अच्छा, उसके बाद उसको पानी देती हूँ, उसकी परवरिश करती हूँ, पौधा निकलता है, पौधे को भी मैं परवरिश करती जाती हूँ, धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ने लगता है और फुल फ्लेज में वो पेड़ बन गया। उसके बाद उस पर आम लगने लगे। अब जब आम लगे तो वो एक कर्म कितना पावरफुल था जो उसको मुझे 100 फल मिले, और वो भी 100 फल खाली एक बार मिला ऐसा नहीं, हर सीजन में मिलता गया। तो सोचो जो बीज बोया था वो कितना पावरफुल होगा जो हर बार मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है। उसको कहा जाता है, वो बीज बोने के कर्म को कहा जाता श्रेष्ठ कर्म, जो रिकरिंग मिलता रहता है, राइट? लेकिन वो फल तोड़ के मैंने खाया, बीज भी मैंने बोया, फल भी मैंने तोड़ के खाया, दोनों कर्म मैंने ही किया, दोनों कर्म में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है, दोनों कर्म मैंने ही किए, कोई अंतर है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, नहीं बांटा भी चलो, पहला कर्म जो था उसका फल था, हाँ चलो उसका फल था, लेकिन जो दूसरा कर्म था उसको खाया और खत्म किया वो अकर्म है। खाया मैंने और पूरा हुआ, तो जो खाने का कर्म किया सेटिस्फेक्शन मिला, उसका मुझे दूसरा फल नहीं मिलता है, वो समाप्त हुआ, वो उस कर्म का फल था। जो कर्म मैंने किया उसकी कोई परछाई नहीं है, उसका कोई दूसरा फल नहीं है, इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है, जिस कर्म का फल नहीं है, क्योंकि वो फल खाने वाला ही कर्म था, इसलिए उसका दूसरा कोई फल नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अकर्म। अच्छा, जब मैंने ये इंटेंशन से अगर उसको बीज रोपित किया कि इसका फल जब निकलेगा ना, कोई भी खाए, मैं ही खाऊं ये नहीं, कोई भी खाए, सबके लिए है, तो उसका फल और अधिक मीठा मिलेगा, है ना? कौन सा फल मिलेगा कि जिसने भी उसको तोड़ के खाया वो अंदर से दुआ देता है, वो दुआ मेरे प्लस के खाते में जमा होता है, वो मेरे पुण्य के खाते में जमा किया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं बीज बोते समय कि इसका फल इस तरह से प्रोटेक्ट कर, किसी को खाने नहीं देना, सिर्फ मुझे ही मिले, तो मेरे प्लस के खाते में कुछ नहीं जाता है, सड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बस तो प्लस तो नहीं हुआ। तो इसलिए इंटेंशन अच्छे हो कि भाई कोई भी खाए उसमें क्या है, जब कोई भी खाए ये इंटेंशन के साथ उसको लगा और जिसने भी खाया बहुत मीठा लगा, अंदर से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो दुआ जो निकलती है उसके अंदर से अननोइंगली, वो दुआ भी मेरे प्लस के खाते में जाती है। इसीलिए गीता का ये दूसरा कर्म का श्लोक पॉपुलर जो है कि कर्म में कुशलता, यही योग है, यही आपके जीवन के अंदर आपको खुशी देगा। कुशलता माना उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत परफेक्ट होगी, बहुत सुंदर होगी, उसमें कोई त्रुटि रह नहीं सकती है। उसको कहते हैं कर्म योग। अच्छा, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, बुद्धिमान योगी कौन? तो कहा जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म देखे, उसको कहेंगे बुद्धिमान योगी। अब कर्म में अकर्म तो हम समझ गए कि बीज बोया और फल खाया, ये फल खाना ये अकर्म है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान है जो अकर्म में कर्म देखे, उसको कहेंगे बुद्धिमान। भावार्थ ये कि जो अकर्म मैंने किया, माना खाने का काम जो किया, खा करके बीज फेंक दिया, तो वो वहां समाप्त हुआ। लेकिन अकर्म में कर्म, माना उस बीज को फेंको नहीं, उसको पुनः रोपित करो। जो पुनः रोपित किया वो अकर्म में कर्म, और तब तक चलो वो जब निकले तब तक मुझे, मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन इसका फल किसी को मिले। तो जाने के बाद जहां भी आत्मा जाएगी, उस समय भी जो लोग याद करते हैं कि भाई फलाने ने ये देखो पेड़ लगाया था, आज भी हम उसका सुख ले रहे हैं, खा रहे हैं इसके आम, जितना उसको याद किया तो उसके खाते में वो जहां भी होगा वो प्लस का खाता उसका उसको प्राप्त हो जाता है। ये है बुद्धिमान योगी के अकर्म में कर्म, फल खाने के बाद उसको पुनः दूसरा श्रेष्ठ कर्म करो, उसको कहते बुद्धिमान योगी। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक सेठ थे, उनके तीन बेटे थे, दो की शादी हो गई थी, तीसरे की शादी होने वाली थी। अब जब तीसरे की बहू जब शादी करके घर में आई, तो बड़ी दो बहुएं थी जो उन्होंने उसको घर का कायदा बताया कि देखो हमारे ससुर जी का कायदा क्या है, सुन लो। बोले क्या है? तो कहा ससुर जी का कायदा है दान नहीं करना। अब जिस घर से लड़की आई थी उसके पिता ने उसको सिखाया था बेटा दान करते जाना, उसको लगा ये तो विचित्र कायदा है, यहां दान नहीं करना। कहा नहीं, ससुर जी को पसंद नहीं है इसीलिए दान नहीं करना। ठीक है, अभी जिस घर में रहना है उसके नियम कायदे कानून पर भी तो चलना पड़ेगा। उसने सोचा ठीक है नहीं करेंगे। अब थोड़े दिन बीत गए, सेठ जी का बड़ा बंगला था, नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, काफी बड़ा मैदान जैसा था जहां उनकी गाड़ियां रहती थी। सेठ जी रिटायर्ड थे, बेटों ने सारा कारोबार संभाल लिया था। अब ऐसा हुआ कि एक दिन जो छोटी बहू थी कपड़े सुखा रही थी गैलरी में, उतने में गेट पर एक भिखारी आता है और भिखारी ने कहा तीन जन्म का भूखा हूं कुछ दे दो। तो ऊपर से छोटी बहू ने जवाब दिया बासी खाना खा रहे हैं कल उपवास करेंगे। ये सुन करके वो फकीर चला गया। तो नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि फकीर ने आकर के मांगा और ऊपर से बहू ने यह जवाब दिया कि बासी खाना खा रहे हैं कल उपवास करेंगे। ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, कौन से दिन उससे उपवास करवाया, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज एक फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। बड़ा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के उसके पिता को फोन कर दिया। ससुर ने लड़की के पिता को फोन कर दिया कि आपकी बेटी जो है ना हमको बदनाम कर रही है, ऐसी बड़ी लड़की हमें नहीं चाहिए अपने घर में, उसको ले जाओ आकर के। अब आज का युग होता था तो कोई पिता जाकर लेके भी आते थे, भले मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी क्लियर करने के बजाय। लेकिन वो जमाना था जब कहा जाता था डोली गई और अर्थी निकलेगी। पिता यहां टेंशन में आ गया कि मेरी बेटी इतनी सुशील है, ऐसा तो कोई कर्म कर नहीं सकती है बदनामी वाला, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन अभी समधी को क्या कहे कि भाई आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे, ये भी तो गलत बात हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो पिता थोड़े दिन तो टेंशन में रहा, थोड़े दिन के बाद उसने सोचा मैं पंचों के पास जाता हूं, गांव में पंच होते थे, पंचों के पास जाता हूं पूछता हूं। तो पंचों के पास गए कि आप तो मेरी लड़की को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहा वो तो बड़ी सुशील है, बड़ी संस्कारी है। तो कहा पता नहीं समधी जी के क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कहा ये हमें बदनाम कर रही है, आप आकर इसको ले जाओ। तो सारे पंचों ने कहा जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक काम करते हैं समधी को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कहा, क्या बात है। तो उन्होंने उस सेठ जी को बुलाकर पूछा, सेठ जी ये तो बताओ ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने सुना दिया, एक फकीर आया था मांगने के लिए, तो बहू ने ये कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। किस दिन हमने बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास करने के लिए कहा, ये तो हमें बदनाम कर रही है। आज फकीर को कहा, कल समाज वाले को कहेंगे, हमारे घर में खाने पीने पर कोई रोक टोक ही नहीं है, जिसको जो मर्जी आए खाए पिए, तो ये क्यों कहती है कि हमने उपवास कराया। कहा अगर ऐसा कहा है तो गलत बात है, कहे काम करते लड़की कोई बुलाते हैं, पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई ऐसा क्यों कहा, तो लड़की ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन वो फकीर जो आया था उसने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। उसके जवाब में मैंने ये बात कही, उसका भाव था कि उसके पास पहले जन्म में होगा लेकिन उसने कभी दान ही नहीं किया तो फकीर बनना पड़ा। अब फकीर था तो क्या दान करेगा, तो उस जन्म में भी नहीं किया। अब ये 3रा जन्म है, अब भी अगर नहीं करेगा तो आगे का जन्म भी ऐसा ही होगा। इसलिए उसने कहा कि कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी दान कर सकूं, ये भाव था। अब हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है, तो इसीलिए जो है मैंने उसको यही कहा, ये जो तुम बंगला गाड़ी मोटर सब देख रहा है, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल हम खा रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आगे उपवास ही करना पड़ेगा, तो बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। इस भाव में कहा। जब ससुर जी की आंखें खुली कि अरे ये नियम कायदा तो गलत मैंने बना दिया और इसका पूरा भाव ही गलत निकलने लगा, मैंने कब कहा कि भाई ऐसा दान नहीं करो, हाँ पैसा वेस्ट नहीं करो, इस रीति से मेरा भाव था, लेकिन दान ही न करो ऐसा नहीं मेरा भाव था। तो कहने का भाव कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या करना है, आगे उपवास न करना पड़े उसके लिए अच्छे कर्म भी करते जाना है। जितना अच्छे कर्म करते जाएंगे उतना, जैसे कहा अकर्म में भी कर्म, वो बुद्धिमान योगी है। तो वो अनेक जन्मों का यहाँ ही जमा कर, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो। जिस तरह से आप मिर्ची का बीज डालो, 3 महीने में फल निकलेगा, है ना, 3 महीने में मिलेगा। कोई आम का बीज डालो तो 2 साल के बाद मिलेगा। नारियल का बीज डालो तो 5-10 साल के बाद मिलेगा। ठीक इसी तरह हमारे कर्म रूपी बीज भी ऐसे हैं कि कुछ कर्म के बीज का फल हमें इसी जन्म में मिलता है, कुछ कर्म के बीज ऐसे होते जिसका फल 2 जन्म बाद भी मिल सकता है, और कुछ कर्म के बीज ऐसे हैं जो 10-20 जन्म के बाद भी मिल सकता है। इसीलिए इंसान जब दुखी होता है तो क्या कहते हैं, पता नहीं ये कौन से जन्म का कर्म, कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है, जिसका फल, बाकी इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे इतना दुख मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का कर्म आज मेरे सामने आया है। तो इसीलिए कहा कर्म अकर्म, जो फल खाने का कर्म खा करके समाप्त नहीं करो, उसको इस तरह से पुनः रोपित करो जो और अच्छा फल, और वो फल ऐसा हो जो सबको प्राप्त हो, इस भावना से किया जाए, है ना। तो हमारे खाते में वो जमा होता रहेगा अननोइंगली भी, जो दूसरे जन्म में भी हमें प्राप्त हो। इसलिए कहा जाता हर इंसान का डेस्टिनी, भाग्य उसके हाथ में, हाथ कर्म करने के लिए। तो भाग्य या भावी जो हम बना रहे हैं वो अपने ही कर्म रूपी हाथ में समाया है। बाकी कोई कहे फलाने के कारण मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, फलाने के कारण ऐसा हो रहा है, फलाने के कारण, कोई इंसान किसी के कर्म के वजह से दुखी नहीं होता है, किसी के भी कर्म के वजह से दुखी। हर इंसान अपने जीवन के अंदर दुख और सुख जो भोगता है उसके अपने ही कर्म फलीभूत जब होने का समय आता है तो उसका निमित्त कारण कोई भी बन जाता है, लेकिन वो निमित्त कारण भी वही बनता है जिसके साथ भागीदारी में वो कर्म किया होता है, इसीलिए वो निमित्त बनता है। बाकी वो व्यक्ति दुख दे रहा है और उसके कारण मैं दुखी हो रही हूं, ऐसा कोई नहीं। हर इंसान अपना ही किया हुआ भोग रहा है, चाहे सुख चाहे दुख, अपना ही किया हुआ है, है ना। तीसरा जो कहा विकर्म, विकर्म किसको कहा जाता है, विकर्म माना विकृत कर्म या विकारों के वशीभूत किया गया कर्म। विकारों के वशीभूत या विकृत कर्म माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, उसको लेकर के जो भी कर्म किया उसको कहेंगे विकृत कर्म, ये विकर्म बन गया। जिसको सरल भाषा में अगर कहे तो पाप कर्म। अब पाप कर्म के लिए कहा जाता है जाने अनजाने पन में भी इंसान बहुत पाप कर लेता है, है ना। अब जान करके तो मुझे पता है कि मैंने किसी को दुख दिया, मैंने किसी को गाली दिया, कोई बुरा कर्म किया, ये पाप के खाते में गए, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? तो अनजानेपन के पाप कर्म वो है जो भागीदारी में किए गए कर्म है। अब भागीदारी में कर्म कौन से किए हैं? तो मान लो कि आज हम मंदिर गए, मंदिर के बाहर एक भिखारी को देखा, उसकी स्थिति को देख करके मेरे मन में दया उत्पन्न हुई और उस दया के कारण मैंने उसको 100 रुपया दे दिया, है ना, 100 रुपया दे दिया। अब उस 100 रुपया मिलते ही उसकी किसी से दुश्मनी थी, उस 100 रुपए से जाकर उसने चाकू खरीदा और चाकू खरीद करके या ऐसे धारदार चीज खरीद करके जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी उसको मारा। तो मैंने दिया तब उसने ये कर्म किया, पाप कर्म किया, तो मैं उसकी हिस्सेदार हो गई, भागीदार हो गई। तो फिर कई लोग पूछते हैं क्या इसका मतलब दान नहीं करना चाहिए? नहीं, गीता में यही दान के लिए कहा गया है कि दान करो तो सुपात्र को दान करो, कुपात्र को दान नहीं करो, नहीं तो उसके साथ की भागीदारी आपकी बन जाएगी। अपने ही पाप कर्म नहीं चुकाए जा रहे हैं तो किसी के पाप कर्म में भागीदारी, ये कौन सी समझदारी है बताओ? समझदार है क्या? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता कि आप अगर जानते नहीं ये सुपात्र है या कुपात्र है तो नहीं दान करना समझदारी है। या तो अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे इसको दान करना ही है, गरीब है, आप खाना खिला दो, है ना, पैसा देने के बजाय आप उसको खाना खिला दो, आपके हाथ का पकाया हुआ ईश्वर की याद में अगर बनाया हुआ खाना उसको मिलेगा तो उसके विचारों में शायद परिवर्तन आ जाएगा, तो ये भी पुण्य के खाते में जमा होगा। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। अच्छा, आपने किसी बच्चे को देखा, आप सोचते कि नहीं मुझे अपने बिजनेस में से इतना हिस्सा दान करना ही है, तो आप स्कॉलरशिप दे दो किसी को, पढ़ाओ किसी को, समझदार बनाओ किसी को। बहुत तरीके हैं दान करने के, बहुत तरीके हैं। जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दो, क्योंकि पैसा देने के बाद आपकी भागीदारी तो बननी ही है, और जब भागीदारी बननी है तो वो जिस तरीके से उपयोग करेगा उस रीति से आपकी भागीदारी बनेगी, और सेटलमेंट करने का समय जब आएगा तभी भी वही निमित्त बनेगा और आपको दुख दे देगा। बताओ, इसीलिए जीवन में कभी कभी कोई ऐसे इंसान मिलता है जिसके कारण से हमें दुख भोगना पड़ता है, फिर हम कहते हैं इसके कारण नहीं, उसके साथ जो मेरी भागीदारी थी इसलिए वो निमित्त बना मुझे दुख पहुंचाने के लिए, है ना। तो कई लोग जो कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया, मैं उसको जानता तक नहीं, उसको मालूम तक नहीं उसके बारे में, और कैसे ये ऐसा कर सकता है मेरे साथ, है ना। कहा जाता है कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एवरीथिंग दैट हैपन्स, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर समाया है। बिना वजह के कोई भी चीज हमारे साथ में होती नहीं है कर्म सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन क्योंकि हम भूल गए हैं, उस कर्म को हम भूल गए हैं, है ना। जैसे एक बार मैं बंबई गई थी तो दोपहर में मेरा कार्यक्रम था 3 से 4, शाम का समय मेरा फ्री था, तो एक परिवार वाले आकर मुझे कहने लगे, दीदी शाम का समय अगर आपका फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हम आपका एक लेक्चर रखना चाहते हैं। मैंने कहा भले रखो। कहा हम सबको 7 बजे का टाइम देते हैं, 7 से 8 आप लेक्चर कराना, फिर सबके लिए भोजन रखेंगे और अच्छा रहेगा। मैंने कहा भले। अच्छा, अब जहां मेरा कार्यक्रम 4 से 5 था, कार्यक्रम पूरा होने के बाद अब वहां से हम सेंटर जाकर के फिर उनके घर जाए तो बहुत लंबा पड़ रहा था, और ट्रैफिक का टाइम शाम के समय शुरू हो रहा था, और ट्रैफिक में अगर फंस गए तो 7 बजे भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो बहन मेरे साथ थी कहा कि अगर आपको एतराज ना हो तो हम उनके घर सीधा चले जाए। मैंने कहा कितना दूर है, क्योंकि कार्यक्रम पूरा होने के बाद लोगों से मिलते करते 6 बज गया हमको, और कुछ प्रश्न उत्तर हुए, प्रश्न उत्तर के बाद जब निकले वहां से तो 6 बज गया था। कहा अब जा करके फिर उनके घर जाना, और 7 बजे तो टाइम उन्होंने दे दिया है, तो हम यहां से डायरेक्ट चले। मैंने पूछा कितना दूर है, कहा 15 मिनट। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर जल्दी भी पहुंच गए ना तो वो माइंड नहीं करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा चलो। अब पहुंच गए हम 6:15 के आसपास पहुंच गए। अब उस समय सारा परिवार बैठ के, सब कारोबार से फ्री हो गए थे, भोजन आदि बना दिया था, तो फ्री हो करके वो टीवी देख रहे थे, कोई सीरियल चल रही थी। तो जैसे ही हम गए तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो। बच्चों ने इशारा किया नहीं, हम बंद करने वाले नहीं। हमने देख लिया, हमने कहा कोई बात नहीं चलने दो, है ना। उसके बाद जो उनका छोटा बेटा था वो कहने लगा मुझे, दीदी ये सीरियल बहुत अच्छी है इसलिए हम बंद करना नहीं चाहते। मैंने कहा कोई बात नहीं आप देखो। अब जब उसने कहा ये बहुत अच्छी सीरियल है तो मैंने सोचा ऐसी क्या बात है खास जो वो देख रहे हैं, तो मैं भी देखने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, स्टोरी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, और लास्ट में जब एंड हुआ तो भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, स्टोरी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर अच्छा क्या था। तो उसने मेरे को समझाया कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे ना, तो इसलिए हमें समझ में आ रहा था ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है। वो तो इतना बोल करके निकल गया वहां से, लेकिन उसके बाद मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा जीवन या हमारे जो अनेक लाइव्स है, हमारा एक जीवन एक एपिसोड है। कितने एपिसोड है, जितने जन्म इतने एपिसोड है। अब हर एपिसोड में कुछ न कुछ तो हुआ है ना, वो हमें पता नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन दूसरे एपिसोड में या 10 एपिसोड के बाद तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और जब आता है तो हम सोचते हैं इसका क्या कनेक्शन, ये व्यक्ति को मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई एपिसोड से तो कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन हमें याद नहीं है। अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद देखने के बाद हम कहते थे वाह बहुत अच्छा, यही कहते थे जैसे वो बच्चों ने कहा वहां, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने सारे एपिसोड देखे थे और इसीलिए सारे एपिसोड को लिंक कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इस एपिसोड को देखते हैं और जानते हैं, हमें कोई एपिसोड का पता नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसके लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन कहां ना कहां तो बोला है कि नहीं बोला है। तो इसीलिए कहा कि कई ऐसे कर्म है हमारे भागीदारी में, इसलिए वो निमित्त बन जाता है मुझे दुख पहुंचाने के लिए, और वो चीज देख करके हम बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। अब समझ लेना कोई अगर कुछ ऐसा दुख दे तो तो कोई ना कोई जन्म का होगा, हुआ पूरा हुआ खत्म हुआ, है ना। टेंशन नहीं लेना कोई बात का, ऐसा बोलना चाहिए क्या? क्यों बोलना चाहिए? टेंशन लेंगे क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो यही होगा। क्यों करना चाहिए? ये समझ लो, कोई ना कोई एपिसोड का खेल पूरा हुआ, पूरा हुआ। जब पूरा हुआ, चुप तो हो गया, तब तो ठीक, खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी मनाओ, कोई ना कोई एपिसोड का जो था पूरा हो गया, है ना। टेंशन लेने नहीं है, बेफिक्र बादशाह बनो। आज देखो, नहीं तो हमें 65 साल के आसपास होने आया है, है ना। न बीपी है, न डायबिटीज है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई ना कोई एपिसोड का पूरा हुआ, खत्म खेल। हाँ, खुशी मनाओ, सुखी रहेंगे, नहीं तो सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। क्यों कहा ऐसा बोलना चाहिए? क्यों कहा? अरे छोड़ो ना, छोड़ो तो छूटो, है कि नहीं? बेफिक्र रहो, अरे किसी ने कुछ कर भी दे, छोड़ो, ले गया अपना हिसाब जो था पूरा हुआ। कोई जन्म का, कोई ना कोई एपिसोड का, वो एपिसोड समाप्त हो गया उसके साथ का, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा कि पाप कर्म जो है ना, हमारे कई भागीदार में। अब अच्छा, पाप कर्म जो होता है ना, खाली एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के साथ भागीदारी में नहीं होता है, कभी कभी 50 लोगों के साथ भी भागीदारी हो जाती है। कैसे कैसे 50 लोगों के साथ भागीदारी हो गई? अब आप देखो, एक कसाई है, एक कसाई ने एक जानवर को मारा, तो वो तो पाप कर्म के भागी हो ही गया। अच्छा, उसने उस जो ये था, उसका मांस जो था वो बेचा। अब बेचा किसी होटल वाले को, तो होटल वाला भागीदार बन गया। अच्छा, उस होटल में किसी ने पकाया, तो पकाने वाला भागीदार हो गया ना। अच्छा, पकाने वाला भागीदार हो गया। उस दिन उस होटल में एक पार्टी थी। अब पार्टी में जितने लोग इनवाइटेड थे, 50 लोग, वो 50 ने खाया, वो 50 के 50 भागीदारी में जुड़ गए कि नहीं जुड़े? जुड़ गए। अच्छा, 50 नहीं, 100 है, 200 है, 500 लोग है, तो जुड़ गए उस भागीदारी में। अच्छा, अब जब चुकाने का समय आता है ना, तो ऐसा योग बनता है कि दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में या चौथे जन्म में वही जानवर, क्योंकि जानवर ने भी तो पुनर्जन्म लिया, वही जानवर, और वो जो कसाई था वो कोई बस का ड्राइवर बना, और उस बस में 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब उसी 50 होंगे जो उस कर्म में भागीदारी है। अब भागीदारी है उस कर्म के, वही 50 अंदर है, बाकी किसी किसी की बस मिस हो गई, जो भागीदारी में नहीं थे ना, उसकी बस मिस हो गई, लेट पहुंचे, या तो जो भागीदारी में नहीं थे अगले स्टॉप पर उतर गए, और वही 50 रह गए जो उस कर्म में भागीदार थे। अब फिर वही जानवर आता है, भागता है, और उसकी जान बचाने के लिए वो कसाई जो ड्राइवर बना, उसका कंट्रोल गायब, ब्रेक फेल हो गई, और पहाड़ी चढ़ रहे थे या ब्रिज से गुजर रहे थे, ब्रिज के वो तोड़ करके पानी में गए, और सबको, किसको कहां लगा, किसको कहां लगा, किसको यहां लगा, जिसने जो हिस्सा खाया था ना, उसको वहीं लगता है। ये है कर्म की गुह्य गति, यह है कर्म की गुह्य गति। फिर लोग क्या कहते हैं, एक ड्राइवर की गलती से, हाँ, एक ड्राइवर की गलती से 50 जो इनोसेंट लोग थे उनको इतना दुख दर्द, किसी का हड्डी टूटी, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ टूटा। भाई हिसाब तो लिया ना उसने, एक जानवर ने इतने 50 लोगों के साथ भी हिसाब लिया, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा कर्म की गति अति गुह्य है, और इसीलिए वो 50 लोगों को, तो वो इनोसेंट एक भी था, इनोसेंट वो ड्राइवर की गलती से या वो जानवर के कारण 50 इनोसेंट लोगों को तकलीफ हुई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, किसका कोई टांग गया, किसी का कुछ गया। अब 50 लोग इनोसेंट थे क्या कहेंगे? नहीं थे। जो इनोसेंट थे अगर बैठे थे तो उसको एक खरोच तक नहीं आती है, वो इनोसेंट था। अच्छा, और ज्यादा कोई बड़ा कर्म का हिसाब था तो ट्रेन डीरेल हो गई और वही डब्बे डीरेल होंगे, 4-5 बीच के या 1-2 बीच के, है ना, और वो गिरते हैं, बाकी पूरी ट्रेन खड़ी है, वो 2 डब्बे डीरेल हो गए, उनको तकलीफ हुई, कोई किसको कहां लगा, किसको कहां लगा। अच्छा, और बड़ा हिसाब होगा तो 400-500 लोग थे उसमें, तो फ्लाइट में गए, और फ्लाइट में गए वो सारे के सारे मरे, एक भी इनोसेंट था। हम रोते हैं हमारा संबंधी मर गया, देखो इनोसेंट था, उसने तो कभी इस जीवन में कुछ किया भी नहीं, कैसे मर गया ये? वो तो आपका या संबंधी इस जन्म में था, इनोसेंट था, लेकिन कोई ना कोई एपिसोड में तो किया होगा कि नहीं किया होगा, तो एक भी इनोसेंट था। इनोसेंट वो था जो बीच में एक फ्लाइट में एक छोटा बच्चा 6 महीने का ऊपर से गिरा, और कहां एक खेत में वो घास का जो रखा होता है ना, उस पर गिरा और जिंदा रहा। अभी टर्की में छोटे बच्चे कितने निकले नीचे से, जो इनोसेंट थे ना उसको एक खरोच तक नहीं आती है, वो इनोसेंट थे। इसीलिए कहा कर्म की गति अति गुह्य है, और उसमें भी पाप कर्म की गति तो अति गुह्य है, और ये पाप कर्म जिस तरह से किया हुआ है उसको भोगना भी उसी तरीके से उतनी आत्माओं के साथ मिल करके ही हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो हमें आगे के जन्म में उसकी भोगना उस रीति से भोगनी पड़े, है ना। तब कहा कि कर्म की गति अति गुह्य है, कर्म अकर्म विकर्म इसको अच्छी तरह से समझो। और इस जन्म में अगर कोई ना कोई ग्रहाचारी आती है तो उस ग्रहाचारी को मिटाने के लिए क्या करना है, समझ लो कि मेरा पुण्य का खाता क्षीण हुआ है, तो मुझे उस पुण्य का कर्म करते हुए उस पुण्य के खाते को बढ़ा दो, आपकी ग्रहाचारी समाप्त हो जाएगी, गारंटी है, गारंटी है। अगर आई भी ग्रहाचारी तो वो आपको छू नहीं सकती है, वो आपको दुख दर्द तकलीफ महसूस नहीं करा सकती, आएगी और चली जाएगी, क्योंकि वो पुण्य कर्म उसको क्या करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। ग्रहाचारी का मतलब है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि अच्छा चलो पाप का कमाई करो और दान कर दो तो हमारा खाता बैलेंस हो जाएगा, नहीं। पाप का जो किया है उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी, और जो पुण्य किया है उसका भी फल भोगना पड़ेगा, दोनों का अपना अपना हिसाब है। ये नहीं कि यहाँ पाप किया और यहाँ दान कर दिया तो ये पाप बैलेंस हो जाएगा, पाप बैलेंस नहीं होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे 500 रुपया उधारी लिया, और उधारी लेकर के मैं कहती हूँ कि चलो मैं है ना दान कर देती हूँ, और उस 500 रुपये का मैंने दान कर दिया, उसके बाद एक दिन आप आए कहे भाई पे वो 500 रुपया तो दे, मैं कहती हूँ अच्छे काम में ही लगाया ना, दान कर दिया ना, अब इसका पुण्य तेरे को भी तो मिल गया। भाई आप क्या कहेंगे, दान करना होगा मैं खुद करूंगा ना, मेरा हिसाब तो चुक तो कर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि आप सोचेंगे चलो इसने दान ही किया है ना, छोड़ दो, छोड़ देंगे 500 रुपया भी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई, मेरा हिसाब क्लियर कर, जो मुझे दान करना होगा मैं खुद करूंगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक इसी तरह आपने जो अच्छे कर्म किए उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल भी भोगना ही पड़ेगा, उसकी भोगना भी तो भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए ये कर्म से ये कर्म बैलेंस हो जाए ऐसा मत समझना, तो करना ही पड़ेगा, है ना। तब कहा कि जीवन के अंदर कभी कभी कर्म की गुह्य गति जब नहीं समझते हैं तो इंसान को बड़ा दुख होता है, ऐसा क्यों, बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। और आज अधिकतर मनुष्य को प्रश्न जो आता है ना कर्मों को लेकर के, ये कर्म ऐसा मैंने तो कभी किया ही नहीं, फिर मेरे को क्यों। अंत में कहानी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आपका अगला लेसन फिर शुरू होगा। वैसे तो कर्म की गति बहुत गुह्य है, लेकिन फिर भी मैंने एसेंस में कर्म अकर्म विकर्म को तो आज समझा दिया आपको, लेकिन अंत में एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी अपने बिजनेस में बहुत मगन रहते थे और सेठानी जो थी घर में कोई काम इतना नहीं होता था तो वो सत्संग करती थी, वो कोई ना कोई अच्छा महात्मा आया उनका सत्संग सुनने जाती थी, पूजा पाठ आदि करती रहती थी। वो कभी कभी कहती थी सेठ जी को कि आप भी भाई चलो सत्संग में। सेठ जी ने कह दिया देखो मैं तुझे रोकता नहीं है, तुमको मुझे रोकना नहीं या मुझे फोर्स करना नहीं है ना, तू अपने काम में व्यस्त रहे, मैं अपने काम में व्यस्त, मेरा बिजनेस इतना कारोबार चलता है मेरे पास टाइम नहीं, तुमको जो करना है करो, मैं छुट्टी दिया है, मेरे को कभी फोर्स नहीं करना। अब सेठानी जी तो अपना काम में बिजी रहती थी, अपने पूजा पाठ आज संत आया ये आया वो आया उसमें बिजी रहती थी। अब ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में कोई बहुत बड़े नामी महात्मा जी पहुंचे। जब महात्मा पहुंचे तो लोगों ने कहा ये महात्मा इतने प्रखर है और इतना इम्प्रेसिव है कि उसकी बातें सुन करके लोग परिवर्तन हो जाते हैं। तो सेठानी जी को लगा चलो सेठ जी को तो ले जाना चाहिए आज, तो उसने जिद किया, कहा मैं जानती हूं आपने मना किया लेकिन फिर भी मैं आज जिद कर रही, आपको चलना ही होगा। कहा मैंने मना नहीं किया, तुम जाओ। बोले नहीं चलो तभी मैं जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी। अब जिद पकड़ ली, अब स्त्री हट के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है ना। तो सेठ जी ने फिर आखिर फाइनल कहा अच्छा ठीक है मैं एक घंटे के लिए आऊंगा लेकिन उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। कहा ठीक है एक घंटा तो एक घंटा सुनो तो सही, उसको लगा सुनेंगे तो बैठ जाएंगे। फिर अब सेठानी जी गए सेठ जी के साथ बैठे और प्रवचन चलने लगा। महात्मा जी ने सुनाया कि भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। अब ये बात सुनकर सेठ जी का दिमाग ठनका, मैं इतना जो कमाया है किसके लिए, दूसरों के लिए कमाया क्या, मुझे तो सब कुछ साथ ले जाना है। तो गए महात्मा जी के पास, मुझे ऐसी कोई विधि बताओ मैं सब कुछ ले जाना चाहता हूं अपने साथ। महात्मा ने कहा ऐसी कोई विधि है नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ना। कहा नहीं मुझे तो सब कुछ ले जाना है, नहीं तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा क्या पीछे लोगों के लिए, मेरे को कोई अपनी संतान नहीं है तो दूसरे भी मौज करेंगे क्या, मैं सब कुछ ले जाना चाहता हूँ मुझे कोई विधि बताओ। बोले ऐसी कोई विधि होती नहीं है, यहाँ की चीजें यहीं रहेगी, वहां जो मिलेगा आपको वो मिलेगा, बाकी यहाँ की चीजें तो यहीं रहेगी। अब सेठ जी बड़े परेशान घर आकर के सेठानी जी को खूब डांट लगाई, इसीलिए मैं आता नहीं हूँ, ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं है ना, इसीलिए मैं तो सब कुछ ले जाना चाहता हूँ, इसके लिए तो कमा रहा हूँ, मैं यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी कमा। अब सेठानी जी चुप, कुछ बोले नहीं। कहा देखा बड़ा गुस्सा किया। अब सेठ जी ढूंढने लगे, कोई मुझे विधि बताए, मैं सब ले जाना चाहता हूँ, सब ले जाना चाहता हूँ। कई महात्माओं के पास गए, भाई मुझे ऐसी कोई विधि बताओ, ये सब ले जाऊं। फिर आकर घूमते घूमते ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गए, है ना। जब यहां पहुंचे तो एक भाई मिल गए, ब्रह्मा कुमार मिल गए। तो ब्रह्मा कुमार को पूछा, भाई मैं तो सब कुछ ले जाना चाहता हूं, मुझे ऐसी कोई विधि मिलेगी यहां से? बोले क्यों नहीं मिलेगी, हर बात का सोल्यूशन होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो कहा बताओ फिर, मेरे को आज तक तो सारे महात्माओं ने कहा कोई भी विधि नहीं है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाया। ब्रह्मा कुमार ने कहा रे बर्तू हाथ आए बर्तू हाथ जाना है, हाथ भर के ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ, आप क्या ले जाना चाहते हैं ये बताओ पहले। कहा सब कुछ ले जाना चाहता हूँ। कहा बंगला ले जाना चाहते हैं? बोले हाँ ले जाना चाहता हूँ। अच्छा मोटर ले जाना चाहते हैं? बोले हाँ ले जाना चाहता हूँ। ये धन दौलत ले जाना चाहते हैं? बोले हाँ ले जा। बोले लिस्ट बनाओ क्या क्या ले जाना है ना। अच्छा उसकी विधि क्या है? विधि ये है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी तो निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? बोले इंश्योरेंस पॉलिसी जितने की चाहिए उतने की, बड़ा अमाउंट की निकालना है तो वो भी निकालते हैं कि नहीं, कि कुछ हुआ तो बड़ा अमाउंट मिल जाएगा आपको, नुकसान ज्यादा हुआ तो? कहा लेकिन जितने की पॉलिसी लेते हैं उस हिसाब से प्रीमियम भी तो हर महीने भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? क्या भरना पड़ेगा? तो बस हर महीने प्रीमियम भरो और आपको वहां मिल जाएगा। आप जो है अगर एजुकेशन, आप समझते कि अगले जन्म में मुझे बुद्धि अच्छी चाहिए, एजुकेशन में दान करो, बुद्धि अच्छी मिलेगी। अगर आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते, हॉस्पिटल में दान करो, प्रीमियम वहां भरो, हॉस्पिटल में दान करेंगे वहां आपको अच्छी हेल्थ मिल जाएंगे। अच्छा आपको समझते बड़ा बंगला ले जाना है तो यहाँ धर्मशाला खोल दो, वहां आपको बंगला मिल जाएगा। अरे भाई सुदामा चावल मुट्ठी दे करके महल ले सकता है, हाँ चावल मुट्ठी दे करके महल ले सकता है, तो आप प्रीमियम भरो और लो ले जाओ जो ले जाना चाहते हैं। तो क्या करना है? बर्तू हाथ आए थे, मुट्ठी बंद आए थे, खूब भर करके ले आए हैं और भर करके ले जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। लेकिन उसके लिए हर महीने प्रीमियम भरो और ले जाओ, जो चाहिए ले जाना, ले जाओ, ले जा सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो।
ओम शांति। बहुत सुंदर उषा दीदी जी ने हमें जीवन के उस लॉ से परिचित करवाया जो सुनते हैं बचपन से, नेकी कर दरिया में डाल, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। और ये वो लॉ है जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर हम पर अप्लाई जरूर होता है, हम सबकी लाइफ पर, एवरी ह्यूमन एनर्जी पर। और ऐसी कोई इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है कि ये डूज है ये डोंट्स है, ये करना है ये नहीं करना है। तो ये कैसे लॉ अप्लाई होता है उसकी इतनी स्पष्ट और गहराई से, इतनी सहजता से आदरणीय उषा दीदी जी ने आप सबके सामने इस सब्जेक्ट को रखा। दीदी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।